پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی, پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر دم رواں ہے زندگی لے کر یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں نخبت ملک. ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت میں براہ راست ریڈیو پر, میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. تو لیجیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہر دم رواں زندگی میں. آج کا پروگرام پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کے ان طالب علموں کے لیے خصوصی طور پر کسی مثبت تبدیلی کی راہ ہموار کر سکتا ہے جو امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کے لیے اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے اور امریکی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ان دنوں پاکستانی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے 111 طلباء و طالبات اس پروگرام کے تحت مختلف امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے زیر تعلیم ہیں. ان 111 طالب علموں کے گروپ کی دو طالبات آج ہمارے پروگرام کی مہمان ہیں. آپ ہیں انڈس میڈیکل کالج ٹنڈو محمد خان کی طالبہ حفصہ انعام, جو نیو یارک کے شہر یوٹیکا کے یوٹیکا کالج میں زیر تعلیم ہیں, اور ہماری دوسری مہمان ہیں ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کراچی کی اقصیٰ نذیر لالوانی, جو یونیورسٹی آف منیسوٹا کے کالج آف ڈیزائن میں اس اسکالرشپ کے تحت ایک سیمسٹر کے لیے فیشن ڈیزائننگ میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع حاصل کر رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حفصہ انعام یوٹیکا نیو یارک سے ٹیلی فون پر, اور اقصیٰ نذیر لالوانی منیاپولس منیسوٹا سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر. السلام علیکم حفصہ انعام. السلام علیکم حفصہ انعام صاحبہ.
وعلیکم السلام.
شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. اور السلام علیکم اقصیٰ نذیر. اقصیٰ نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقصیٰ نذیر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. گفتگو شروع کریں گے حفصہ انعام آپ سے. کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو گلوبل انڈر گریجویٹ پروگرام کے بارے میں, جس کے تحت پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں سے 100 سے زیادہ طالب علم یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے زیر تعلیم ہیں. اس میں بتائیے کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور یہ سوال پوچھا ہے فیس بک پر یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ کے غلام یاسین جعفر نے بھی.
جی, گلوبل انڈر گریجویٹ ایک ایسا پروگرام ہے جو انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے, جو یا تو اپنے پہلے سال یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہوتے ہیں یا ان کا ایک سال رہ رہا ہوتا ہے ابھی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے لیے. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک سیمسٹر امریکہ میں پڑھائی کرنے کا موقع ہے, اور اس کی سلیکشن کا کرائیٹیریا جو ہے وہ ہر سال ویری کرتا ہے, ہر سال ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ جتنے زیادہ اپلیکنٹس ہوتے ہیں اس کی بیسس پہ ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. تو اگر اس کی مثال لی جائے تو ہمارے ٹائم پر اس کے لیے اپلیکنٹس کی جو نمبر آف اپلیکنٹس تھے وہ 9000 تھے فرام آل اوور پاکستان, اور اس کی لنک جو ہے وہ فیس بک اور اس کی ویب سائٹ پر ہر جگہ پر شیئر کر دی جاتی ہے. یہ یو ایس سی ایف پی کی طرف سے ایک پروگرام ہے, اور اس کو فنڈ جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ آف گورنمنٹ کرتی ہے, اور 9000 اپلیکنٹس میں سے پھر اسٹوڈنٹس کی سلیکشن جو ہوتی ہے وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کی بیسس پر ہوتی ہے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ اپلیکیشن بھرنا ہوتا ہے, اور اس میں پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ طالب علم کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ اپنی سوشل ورک میں ایکٹیو ہیں اور کتنا زیادہ اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کی وہ سلیکشن کرتے ہیں, اور آگے پھر انٹرویو وغیرہ کا اور پھر ٹوفل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو سلیکشن تقریباً 6 ماہ تک وقت لے لیتا ہے.
اچھا, تو 6 ماہ کے پروسیس میں جتنے انہوں نے ہر سال لینے ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور یہ ایک سیمسٹر کے لیے ہوتا ہے, تو سال میں 2 بار یہ اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں.
بالکل.
تو ان میں طالبات کا ریشو کوئی مخصوص ہوتا ہے یا یہ اوپن ہوتا ہے کمپٹیشن؟
نہیں, طالبات کا جو ہے وہ مخصوص نہیں ہوتا نمبر, اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے. ہمارے وقت میں جیسے 9000 اپلیکنٹس تھے فرام آل اوور پاکستان, لیکن پھر ان 9000 میں سے فائنل جو ہوئے تھے شارٹ لسٹ وہ 111 لوگ تھے جو ابھی اس وقت امریکہ میں پڑھ رہے ہیں.
اچھا, تو پھر ان کو مختلف یونیورسٹیوں میں ان کے سبجیکٹس کے مطابق پلیس کر دیا جاتا ہے؟
बिल्कुल, उसका भी एक अलग सिस्टम होता है यहाँ पे. अमेरिका में काफी यूनिवर्सिटीज खुद अप्रोच करती हैं यू ग्रेड वालों को कि उनको स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें. तो फिर सबके एजुकेशनल क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टेट्स में अपने अपने हिसाब से प्लेसमेंट दे देते.
अच्छा, तो और उन्हीं के तहत, यानी जो उनका सब्जेक्ट होता है उनकी चॉइस का सब्जेक्ट होता है, या किसी और सब्जेक्ट में भी उनको प्लेस कर दिया जाता है?
वो जी डिपेंड करता है कि अगर उनके क्रेडिट वापस जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से वो छोड़ के आए हैं, तब उनको वही सब्जेक्ट उठाने पड़ते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जो वो वहां पाकिस्तान में पढ़ रहे होते हैं. अच्छा. लेकिन जैसे मेरी सिचुएशन में, जिस तरह मेरे क्रेडिट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, तो मुझे एक ओपन चॉइस थी कि मैं बायो प्री मेड में और बायो से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट उठाना चाहूँ वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ.
अच्छा, तो इस वक्त आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं लेकिन आप प्री मेडिकल पढ़ रही हैं, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो आप इस वक्त पढ़ रही हैं?
जी, इस वक्त मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल. 3 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट है क्योंकि मुझे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी थी. एक सब्जेक्ट मेरा है साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी. दूसरा मेरा है पब्लिक स्पीकिंग और तीसरा है मेरा बायो रिसर्च मेथड. चौथा जो मेरा सब्जेक्ट है वो है अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. वो मैंने बाय चॉइस नहीं लिया था, लेकिन वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम की कि आपको एक अमेरिकन सब्जेक्ट उठाना होता है ताकि आप कल्चरल पर्सपेक्टिव से अमेरिका को अच्छे तरीके से जान सकें.
ठीक, तो ये हैं वो मालूमात जो हमने फराहम की आपके तवस्सुस से अपने सुनने वालों को. और अब आपसे गुफ्तगु जारी है, लेकिन हम इस वक्त शामिल कर लेंगे गुफ्तगु में आज के प्रोग्राम की दूसरी मेहमान अक्सर नज़ीर लालवानी को, जो मिनेसोटा से हमारे साथ टेलीफोन पर हैं. तो अक्सर नज़ीर लालवानी, इन्होंने तो बता दिया हफ्सा ने कि इस प्रोग्राम में दाखिले की शराइत क्या हैं और कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. आप हमें ये बताइए कि ये जो है आपने जो सब्जेक्ट रखा फैशन डिज़ाइनिंग का, वो सब्जेक्ट पाकिस्तान में पढ़ने के बाद जब यहाँ अमरीकी यूनिवर्सिटी में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा, तो क्या डिफरेंट लगा तरीक़ा तालीम में, और क्या डिफरेंट लगा कॉन्टेक्स्ट में और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पर?
बेसिकली मैं जो पाकिस्तान में मेरा जो कोर्स है उसका नाम है फैशन डिज़ाइन मैनेजमेंट. तो मैं मतलब पाकिस्तान में मेरे जो कोर्सेज होते हैं वो बिजनेस कोर्सेज भी होते हैं और फैशन के स्टूडियो कोर्सेज भी होते हैं. तो यहाँ पे जो मैं कोर्सेज ले रही हूँ वो बेसिकली बिजनेस कोर्सेज हैं. एक है लीडरशिप इन यूनिवर्सिटी एंड देन द अदर वन इज रिटेल मर्चेंडाइजिंग. तो जो मेरा रिटेल मर्चेंडाइजिंग का कोर्स है वो पाकिस्तान में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये लिया था. और बाकी यहाँ पे जो फैशन कोर्सेज हैं वो जो अभी ऑफर हो रहे थे स्प्रिंग में, वो मेरे पहले से ही मैंने पाकिस्तान में लिए हुए हैं.
अच्छा,
तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे बिजनेस कोर्सेज सेलेक्ट किए थे. अच्छा. ताकि मेरे ट्रांसफर हो सके, मेरा टाइम वेस्ट ना हो.
हाँ, लेकिन हफ्सा जो कुछ यहाँ पढ़ेंगी उसका ज़्यादातर हिस्सा उनको वहाँ, उसके क्रेडिट्स उनको वहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हैं जो आपको फ़ायदा देंगे और क्रेडिट आपको वहाँ मिल जाएंगे.
डिपेंड करता है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरियाज होते हैं पाकिस्तान में भी. तो मैं भी मेरी भी कोशिश पूरी होगी यूनिवर्सिटी की तरफ के वो मेरे क्रेडिट ट्रांसफर कर लें, लेकिन अगर नहीं हो सकेंगे तो फिर शायद मुझे फिर से वहीं वहाँ पे ही कोर्स अगेन लेना पड़े.
अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ से जो कुछ पढ़ें उसको फिर वहाँ जाकर किसी अंदाज से उसको अप्लाई करें?
इसका होता है कि हम लोग प्रोग्राम से एसोसिएटेड हैं, तो इस अब यहाँ से जाने के बाद 2 साल तक हम जो यूग्रेड है, यूग्रेड और यूएससीएफटीए वाले हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे और उनके जो इवेंट्स आते हैं उनमें उनको हेल्प आउट करेंगे ताकि हमारी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बढ़ सकें, अच्छी हो सके.
अच्छा, हफ्सा आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थीं कि यहाँ पर जब आप एक सेमेस्टर मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके तहत आपको वापस जाकर कोई लाजमी तौर पर कुछ इनकी शराइत को पूरा करना होता है जो इस प्रोग्राम की होती है?
जी, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि यूग्रेड का यूजुअली लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है कि यूग्रेड सिर्फ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, जबकि यूग्रेड शुरू से हमें बताया जाता है कि इट इज़ नॉन अकेडमिक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम. तो यहाँ पर हमें भेजते जरूर है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इट इज अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मोर देन इट इज अ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम. तो स्टूडेंट को ना सिर्फ यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम की अवेयरनेस हो जाती है और किस तरह यहाँ पे पढ़ाई का तौर तरीका अलग होता है हमारे मुल्क से, बल्कि उनको यहाँ के कल्चरल एक्सपीरियंसेस भी पता चलते हैं और वो यहाँ पर कल्चरल एम्बेसडर्स बनकर आए होते हैं.
अच्छा, तो फेसबुक पर भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम बहुत से लोग सुन रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं. और एक सवाल इन्होंने मलिक जैन नासिर यूसुफ जई ने फिर से किया है कि बताइए दोबारा से कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है. मेरा ख्याल है आप इनको वो वेबसाइट का एड्रेस भी बता दीजिए जहां जाकर इन्होंने अप्लाई करना है और क्या कैसे अप्लाई करना है, मुख्तसरन अगर दोहरा दें तो. ये हमारे भाई कह रहे हैं कि बताइए.
प्रोसीजर है वो आई गेस जो इस साल का है वो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी हैं, तो जो अब एप्लीकेशन ओपन होंगी ना फॉर स्कॉलरशिप वो होंगी नवंबर में, नेक्स्ट नवंबर 2018 में. एंड जो जो वेबसाइट होती है वो होती है USCFP की, मतलब USCFP.pk करके कुछ,
USCS पाकिस्तान, अगर USCFP वो लिख लेंगे गूगल पर तो उनको आसानी से मिल जाएगी.
और हम प्रोग्राम के बाद अपने फेसबुक पेजेस पर ना इसका लिंक पोस्ट भी कर देंगे ताकि जो स्टूडेंट्स चाहें कि वो अप्लाई करें तो वो इस वेबसाइट पर जा सकेंगे.
जो एप्लीकेशन होती है उसमें अगर स्टूडेंट्स अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में प्रॉपरली बताते हैं तो उनका मतलब सिलेक्शन का ज्यादा चांसेस होते हैं. एंड द अदर थिंग इज उनका पर्सनल स्टेटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए.
तो हफ्सा आप बताइए कि क्या क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि इस जो टेस्ट है या इस जो क्राइटेरिया ये सजेस्ट करते हैं उन पर वो स्टूडेंट्स पूरे हो सकें.
तैयारी का सिलसिला जो है वो अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे अगर पूछा तो मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आपके पास अभी वक्त है एप्लीकेशन के आने में अगले साल की और आप एलिजिबल हैं तो आप सबसे पहले तो अपना सोशल वर्क की तरफ ध्यान बढ़ा लें, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे यही बोला था कि हमारा सोशल वर्क इतना ज्यादा नहीं है, हमारे सर्टिफिकेट्स इतने नहीं हैं, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं. तो अगर उनके पास टाइम है तो टाइम को अवेल करके वो डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ का पार्ट बन सकते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट बन सकते हैं, वॉलंटियर का वर्क कर सकते हैं, ताकि जब वो अप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त उनके पास वो सारे सर्टिफिकेट्स और जो है वो मटीरियल अवेलेबल हो और वो अपनी एप्लीकेशन में वो इंक्लूड कर सकते हैं. पर्सनल स्टेटमेंट में भी एक उनका बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब वो देखते हैं कि बच्चा बहुत एक्टिव है अपनी सराउंडिंग्स में.
अच्छा, तो इसके बाद जब वो यहाँ पर ज़ेर तालीम होते हैं तो उनको रहने की सहूलत मिलती है और उनको मंथली वजीफा भी मिलता है ताकि वो उस यानी आप बड़े आराम से यहाँ पर वो रह सकते हैं और होस्ट फैमिलीज के साथ रहते हैं. और
होस्ट फैमिली के साथ नहीं, हम अपने डॉर्म्स हॉस्टल्स में रहते हैं. सबको जो यूग्रेड प्रोग्राम की तरफ से हमेशा जो बच्चों को प्लेस किया जाता है वो हॉस्टल्स में किया जाता है. उनको होस्ट फैमिलीज प्रोवाइड की जाती है कि अगर मतलब जो सिटी है उसमें आपको घुमा सके वो और सब, लेकिन रहते सब हॉस्टल्स में है और उनको मील प्लान प्रोवाइड किया जाता है जिसमें जो यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके बच्चे खाना खा सकते हैं. और फिर जो स्टिपिन वगैरह होती है वो अलग से दी जाती है.
अच्छा, वो अलग से दी जाती है. और जो जो होस्ट फैमिली उनके साथ वो मतलब रह सकते हैं वो अगर चाहें तो.
होस्ट फैमिली के साथ अगर वो वीकेंड्स पे रहना चाहे तो रह सकते हैं या कहीं घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, लेकिन जो उनकी जो रिहाइश होती है वो होती है हॉस्टल्स में. अच्छा. जो यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल्स होती है ना कैंपस के अंदर वहाँ.
अच्छा, तो आप दोनों भी
किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मेरी सिचुएशन यहाँ पे प्लेसमेंट का जो सिलसिला था वो पहले से ही जारी हो चुका था मेरी क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले, तो अभी डॉर्म्स की बाकायदा तरीके से आगाज नहीं हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे होस्ट फैमिली के पास रहने का कुछ अरसा दिया था. तो 4 दिन मैं अपनी होस्ट फैमिली के साथ थी और उसके बाद फिर जैसे ही कॉलेज खुला था तो फिर मैं अपने डॉर्म्स में
वापस आ गई. अच्छा, फेसबुक पर अजहर हुसैन ने कहा है कि वो MS कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में और वो MIT यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहती हैं. इसी तरह जैन नासिर ने कहा है कि मैं फार्मेसी के 5th semester में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस प्रोग्राम के लिए?
जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए क्राइटेरिया यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बैचलर यूनिवर्सिटी का 4 साल का है तो आपको अपने पहले साल में अपने दूसरे सेमेस्टर में होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए. और जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप वापस आए अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल कर तो तब आपके पास एक सेमेस्टर पाकिस्तान में रहना चाहिए ग्रेजुएशन तक।
अच्छा,
और जो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि पीएचडी ये जो प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, तो पीएचडी के लिए अलग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं ईएफपी की तरफ से, वो वेबसाइट पे इनको मिल जाएंगे जो पीएचडी के लिए मतलब।
अच्छा, और इसके लिए भी जो पीएचडी के लिए ये वो भी इसी वेबसाइट पर जाकर उनको इन्फॉर्मेशन उस बारे में मिल जाएगी अगर वो
जी, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप अलग होती है लेकिन वो यूएसईएसटी ही फंड करता है।
हाँ, तो इसी वेबसाइट पर जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जा रहे हैं कि अमरीका के किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो इस वेबसाइट पर जिसका इन्होंने भी बताया और हम प्रोग्राम के बाद अपने फेसबुक पेजेस पर भी पोस्ट कर देंगे इसका लिंक, तो वहाँ जाकर मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारी गुफ्तगू भी जारी है अक्सा और हफ्सा, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमेरात को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ते हुए कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत अमरीका का दौरा करने वाले मुमताज पाकिस्तानियों से। ये प्रोग्राम नश होता है पाकिस्तान में हमारे सुनने वालों के लिए हर जुमेरात को रात 9 से 9:30 बजे तक रेडियो पर मीडियम वेव 972 पर और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पेशकश यास्मीन जमील जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन का प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी। आज की मेहमान है ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमरीकी यूनिवर्सिटियों में एक सेमेस्टर की तालीम हासिल करने वाले 100 से ज्यादा तालिबे इल्मों के ग्रुप की दो नुमाइंदा तालिबात इंडस मेडिकल कॉलेज टंडू मोहम्मद खान की तालिबा हफ्सा इनाम जो न्यूयॉर्क के शहर यूटिका के यूटिका कॉलेज में ज़ेर तालीम है, और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची की अक्सा नज़ीर अलवानी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में फैशन डिजाइनिंग में एक सेमेस्टर के लिए तालीम का मौका हासिल कर रही हैं। फेसबुक पर एक बार फिर मलिक जैन ने लिखा है कि वेबसाइट दोबारा बताइए जहां से ये राब्ता कर सकते हैं। जी हफ्सा या
जी, हाँ जी, इनको कहें कि गूगल पे सर्च करें USEFP के नाम से तो उनको वेबसाइट मिल जाएगी।
USEFP के नाम से गूगल में सर्च करें तो आप इस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे, और हम शुक्रगुजार हैं अपने उन सुनने वालों के जो इस वक्त हमारे जो फेसबुक पर प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं सुन रहे हैं। इलाही मंजूर हैं और अजहर हुसैन हैं और जमशेद खान मसूद हैं, और इसके अलावा इलाही मंजूर ने भी लिखा है कि लेकिन उनका सवाल हमारे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या लिखा, मजरत खान। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हफ्सा आपसे पूछ लें या आप बता दें ये जो हैं दूसरी हमारी तालिबा कि क्या ये जो प्रोग्राम है इसके करने के बाद कुछ ग्रांट्स मिल सकती हैं जिसके तहत आप अपना कोई कारोबार या अपना कोई फलाही इदारा खोल सकते हैं, ऐसा कुछ है?
जी, ग्रांट्स का सिलसिला यूँ होता है कि जैसे अक्सा ने पहले बताया कि हम जब वापस जाते हैं तो ये सिलसिला 4 महीने या 1 सेमेस्टर के साथ अमेरिका में ही खत्म नहीं हो जाता हमारे साथ। हम जब वापस जाते हैं तो हम अलुमनाई का पार्ट बन जाते हैं, यूएस अलुमनाई का पार्ट। तो यूएस अलुमनाई का पार्ट बनने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप सोशली एक्टिव होते हैं सोशल सर्विसेज में और कम्युनिटी सर्विसेज में, तब अगर आप कोई चीज इनिशिएट करना चाहते हैं तो यूजुअली फंडिंग एक बहुत बड़ा जो है वो मसला होता है, तो यूजुअली सबको पेश आ रहा होता है। तो जब आप कोई चीज इनिशिएट कर रहे होते हैं बीइंग अ यूएस अलुमनाई, और आप अगर ग्रांट्स के लिए यूएस गवर्नमेंट को जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं तो थ्रू आफ्टर गोइंग अ प्रोसीजर आपको वो ग्रांट एट सम पॉइंट मिल सकते हैं, और आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फॉर्म कर सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है इनिशिएशन, जरूरी नहीं है कि वो कोई स्कूल खोलना हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है और आप उसको फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो आपको ग्रांट्स मिल सकते हैं,
मिल सकती है। तो गुफ्तगू को अब आपके बारे में कुछ सवाल कर लें, हम बात करेंगे अक्सा नज़ीर ललवानी से कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर जब आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आकर यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करनी शुरू की, तो क्या बड़ा डिफरेंस लगा आपको तरीक़े तालीम में?
सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे पहुँची थी तो सिंस मिनियापोलिस बहुत ठंडा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मुझे सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्नो और सब हो रहा था। और उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो जो यहाँ पे पढ़ाई का तरीका है वो इस तरह है कि डिस्कशन बेस्ड होता है. सब मोस्टली टीचर एक बात करती है और उसके बाद पूरी क्लास डिस्कस करती है. और पाकिस्तान में तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. इट्स लाइक मोर लेक्चर बेस्ड. जब टीचर बात कर रहा होता है सब सुन रहे होते हैं, इस तरह होता है. तो ये मुझे सबसे ज्यादा डिफरेंट लगा. और काफी इतनी चीजें डिफरेंट नहीं है बेसिकली. बस यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे आपको 24/7 अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ता है. क्योंकि जो एक पाकिस्तान में मिथ है कि यूएस में जाके आप इतना मतलब यूएस की पढ़ाई भी मुश्किल नहीं है, तो वो गलत है. क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह बहुत मिलते हैं और आपको प्रॉपरली टाइम पे सबमिट करने होते हैं फॉर योर ग्रेड.
अच्छा, तो हफ्सा आपने क्या सीखा यहाँ पर ऐसा नया जो आप समझती हैं कि यहाँ ना आती तो ना सीख पाती?
यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के एक्सपीरियंस के साथ साथ कल्चरल एक्सपीरियंस था. तो हमारा माइंड हमेशा उसी जगह पर होता था कि हर चीज की लर्निंग करनी है, ना सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में लर्न करना है. तो यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग, जैसे अफसा ने कहा कि हमें टाइम पर असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, उस चीज ने मल्टीटास्किंग बहुत सिखा दी है. क्योंकि अब डेडलाइंस होती हैं, हमारी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं यूएस ईएसपी की तरफ से, ग्रेड की तरफ से, और फिर कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. तो मल्टीटास्किंग बहुत सीखी है यहाँ पे. मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सीखी है यहाँ आकर, कि किसी चीज को डिले नहीं करना. क्योंकि यहाँ पर अगर कोई टाइम आपको मिलता है किसी प्रोफेसर या किसी की तरफ से, तो आपको उसी टाइम के अंदर वो काम पूरा करना है, वरना एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अगले इंसान पर. तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं. तो यहाँ आके फिर मैनेज करना और फिर उस चीज को लर्न कर जाना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में.
अच्छा, और फेसबुक पर एक सवाल अभी हमारे हरदम रवा जिंदगी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था आशिक खास खैली ने, और कि इस प्रोग्राम के तहत क्या सिंधी स्टूडेंट्स को भी दाखला मिल सकता है?
कोई भी अप्लाई कर सकता है. आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉलेज स्टूडेंट्स के होते, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं.
अच्छा, और अलाउद्दीन आवान ने फेसबुक पर लिखा है कि दो सवाल लिखे हैं. एक सवाल तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि आप उसका जवाब दे पाएंगे, एक सवाल पूछ लेती हूँ कि जो स्टूडेंट्स दो साल का मास्टर्स डिग्री कर रहे हों आफ्टर 14 इयर्स फॉर्मल एजुकेशन के, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं?
वो नहीं कर सकते क्योंकि ये वो मास्टर्स इज पोस्ट ग्रेजुएट. हम लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है, लेकिन यूएससीएससी की तरफ से ऑफर होते हैं मास्टर्स के भी प्रोग्राम्स. तो उनको वेबसाइट वो चेक करें, उन्हें जरूर मिल जाएगी कोई स्कॉलरशिप.
अच्छा,
फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूजुअली जो है वो मास्टर्स के लिए होती है. तो अगर कोई अपनी ग्रेजुएशन कर चुका है और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का है के लिए ऑप्शन,
तो उसकी ऑप्शन है. तो वही वेबसाइट जो अभी बताई इन्होंने, यूएस EFP पर जाएं, तो आपको सारी मालूमात जो जो आप चाहते हैं, जो भी अमेरिका के किसी स्कॉलरशिप को, तालीमी स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहता है, वो इन वेबसाइट्स पर जाकर कोशिश करें, तो अपनी पसंद का कोई ना कोई स्कॉलरशिप उनको मिलने की उम्मीद ज़रूर हम इस वक्त यहाँ दिला रहे हैं कि वो जाएं, रابطہ करें. स्कॉलरशिप्स होते हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए बहुत दफ़ा ज़ाया भी चले जाते हैं यहाँ के स्कॉलरशिप्स, ऐसे भी होते हैं. अच्छा, तो
वो फेसबुक पर भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, उनके पेजेस हैं और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हैं, लिंक्स भी हैं वेबसाइट.
बिल्कुल. अच्छा, ये अभी आपने कहा था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो अब अक्सा आप बताइए कि आपने क्या सीखा अमरीकी कल्चर के बारे में और क्या कुछ सिखाने की कोशिश की?
अमरीकी कल्चर के हिसाब से जो मैंने चीजें सीखी और जो मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट की है, वो इस तरह है कि लाइफ इनकी बहुत फास्ट है, और मतलब उसको कोप अप करने के लिए आपको मतलब अपने शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं और उस हिसाब से चलना पड़ता है. और उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद बेसिकली हम लोगों ने ट्रैवलिंग बहुत की है यहाँ पे आने के बाद. मतलब हमारी जो स्प्रिंग ब्रेक थी उसमें हम लोग जो यूग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमें स्टिपेंड्स वगैरह मिलती हैं, तो हमारे पास इनफ मनी होते हैं कि हम ट्रैवल कर सकें. तो हमने ट्रैवल किया था यहाँ पे, हम लोग ईस्ट मतलब नॉर्थ से मैं ईस्ट गई थी एंड काफी ट्रेवल किया था. तो उस ट्रेवलिंग में हम काफी चीजें सीखते हैं कि यूएस में कितनी डाइवर्सिटी है और हर सिटी कितना डिफरेंट है बेसिकली.
अच्छा, और हफ्सा आपने बताया था कि आपने कोशिश की थी बिरयानी पका कर खिलाने की, और आप बिरयानी का मसाला पाकिस्तान से लाएंगे, शायद यहाँ मिलता नहीं आपके ख्याल में, तो बताइए कि वो जो आज़म था जो आप लेकर आई थी इस कल्चर को, खाने के कल्चर को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तानी, तो वो कहाँ तक पहुँचा?
जी कल्चर जैसा कि आपको पता है कुछ स्पेसिफिक चीजों से आता है, कपड़ों वगैरह से, रहन सहन से, खाने पीने से. तो मेरे सीनियर्स जो पहले आ चुके थे उनसे मैं इन टच रही थी आने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं जाके एडजस्ट करोगी तो वहां पर शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी. तो मेरे माइंड में एक यही चीज थी कि खाना और रहना सहना तो एक बेसिक नीड है, तो ये चीजें, इन चीजों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रेडिली आपके पास.
ठीक.
तो बस इसी सिलसिले में मैं अपने साथ कुछ स्पाइसेस वगैरह ले आई थी, क्योंकि जहन में था कि अंग्रेज जो है वो इतने शौकीन नहीं होते स्पाइसी खानों के. तो हमें, क्योंकि पाकिस्तानियों को आदत नहीं है, तो इस वजह से अपने साथ में बिरयानी मसाला भी ले आई थी,
लेकर आई थी. लेकिन अभी तक उसका मौका आपको नहीं मिला, और इम्कान है कि आप वो मौका तलाश कर रही हैं कि वो.
जी मैं मौका बिल्कुल तलाश कर रही हूँ, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से रेसिपी देख कर या अपनी अम्मी से पूछ कर मैं बना के इनको खिला दूँ, तो इनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि पाकिस्तानी खाने किस किस्म के.
और अक्सा आप तो हैं ही फैशन डिजाइनिंग के शोबे की, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तानी फैशन इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की.
जी मेरी क्लास में मेरी प्रेजेंटेशन हुई थी, और उसमें मैंने जो जिस तरह की ड्रेसिंग हम करते हैं और जो ड्रेसेस हमने, जो मैंने फैशन शो हम लोग का पाकिस्तान में हुआ था, वो उनकी पिक्चर्स वगैरह जो स्टूडेंट्स को दिखाई तो काफी इंप्रेस थे, और वो मुझे मतलब अप्रोच कर रहे थे कि मुझे और डिजाइन देखनी है आपकी और इस तरीके से. तो यहाँ पे जो मैंने देखा है तो यूएस के लोग जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर है उससे बहुत फैसिनेट होते हैं क्लोथिंग से.
तो आपने कौन से, यानी किसी खास सूबे की सकाफत को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, या जनरली पाकिस्तान के जो लिबास हैं उनको पेश करने की कोशिश की अपने थ्रू या दिखा कर किसी तरह?
मैंने जो बेसिकली जनरली दिखाया था जो हम वेडिंग्स वगैरह पे ड्रेसिंग करते हैं और इस तरीके की, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन किए थे वो इस तरह के ही थे, तो मैंने जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं पाकिस्तानी और इस तरीके के दिखाए थे, वो इससे बहुत फैसिनेट, इवन माय टीचर्स, माय प्रोफेसर्स वो बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहे थे, उन्होंने कहा मुझे.
तो आजकल क्या अमेरिका में, अमेरिका के नौजवानों में फैशन का क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है इनका?
इनका बेसिकली मैंने जो देखा है, मैं अप्रिशिएट नहीं करते फैशन डिजाइन को जितना यहाँ पे करते हैं. मतलब जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा मेजर क्या है, मैं बताती हूँ कि मैं फैशन डिजाइन की स्टूडेंट हूँ, तो वो हमेशा ये मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ ये तो लाइक बहुत अमेजिंग है. और उसके बाद यहाँ पे जो फैशन का जो बेसिकली ट्रेंड है वो ऑब्वियसली वेस्टर्न है, तो इनके हम जो फैशन के जो
अच्छा. और लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियों की तालिबात हैं वो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आम तासुर ये है कि वो फैशन ज़रूर करती हैं, तो यहाँ की यूनिवर्सिटियों की तालिबात को आपने देखा कि उनमें भी उसी तरह का जोश और जज्बा है फैशन के हवाले से, या यहाँ पर ट्रेंड दूसरा है?
मैंने बेसिकली देखा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लोग इतना तैयार होके नहीं आते, मतलब इस तरह होता है कि रैंडमली जैसे भी रेडी, मतलब एक हाँ प्रॉपर उसमें होते हैं ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि बहुत ज्यादा रेडी होके आते हैं. लेकिन हाँ जो उनकी पार्टीज या मतलब जो उनके इवेंट्स होते हैं उसमें दे गेट रेडी प्रॉपर इस तरह. लेकिन पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में इस तरह होता है कि डेली बेसिस जो बच्चे प्रॉपरली रेडी होके आते हैं, और मतलब ड्रेसिंग को अपनी फैशन के तरफ बहुत रुझान है पाकिस्तान का.
अच्छा
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं.
अच्छा हफ्जा, अब आपसे प्रोग्राम के आखिरी सवाल कर लेते हैं कि पाकिस्तान वापस जाकर आपने यहाँ से जो कुछ सीखा है, आप क्या समझती हैं कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए वहाँ फायदा देगी?
सबसे बड़ी चीज तो मुझे जो हमेशा से एक चीज की क्यूरियोसिटी होती थी वो यही होता था कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ का इम्प्रूव किया जाए पाकिस्तान का, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक नीड है हमारे मुल्क में अभी भी. तो मैं यही कोशिश करूंगी कि यहाँ से जो भी सीख कर जाऊँ, इनके पढ़ाई करने के तरीके और सब कुछ वहाँ जाके अगर वो मुझसे इम्प्लीमेंट हो सके मेरी कैपेसिटी में, जितना भी कुछ कर सकूँ तो वो इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जा सके.
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया. प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ. हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हरदम रवायत ज़िंदगी में आज हमने गुफ्तगू की इंडस मेडिकल कॉलेज टंडो मोहम्मद खान की तालिबा हफ्सा इनाम से, जो न्यूयॉर्क के शहर यूटिका कॉलेज में ज़ेर तालीम है एक सेमेस्टर के लिए, और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कराची की अक्सा नज़ीर लालवानी, जो मिनेसोटा के कॉलेज ऑफ डिज़ाइन में एक स्कॉलरशिप के तहत एक सेमेस्टर की फैशन डिज़ाइनिंग में तालीम हासिल कर रही हैं. इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का प्रोग्राम समेटते हैं. हमारे प्रोड्यूसर थी नुफ़त मलिक. यास्मीन जमील को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.
इस प्रोग्राम में جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔